आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और आज हम श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के सातवें अध्याय के 32वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है प्रह्लाद ने गर्भ में क्या सीखा। तो ये श्लोक बोर्ड पर लिखा है, आप हमारे साथ साथ दोहरा सकते हैं। हरि सर्वेषु भूतेषु हरि हि सर्वेषु भूतेषु भगवान् अस्तीश्वरः भगवान् अस्तीश्वरः इति भूतानि मनसा इति भूतानि मनसा कामेस्तः साधु मानये कामेस्तः साधु मानये। हरि शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। हरि ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों में भगवान परम पुरुष आस्ते स्थित है। ईश्वरः सर्वश्रेष्ठ नियंता इति इस प्रकार भूतानि सारे जीव मनसा ऐसी समझ से काम है इच्छाओं से तह उन्ह साधु मानिए। मनुष्य को चाहिए कि अत्यधिक आदर करे। अनुवाद हमारे पीछे पीछे दोहराइएगा। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके अंतर्यामी प्रतिनिधि स्वरूप परमात्मा को सदैव स्मरण करे, जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित हैं। इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। तात्पर्य कृपया सुनिएगा। हरि ही सर्वेषु भूतेषु। कभी कभी ढोंगी लोग इस कथन को ठीक से ना समझने के कारण ये झूठा निष्कर्ष निकालते हैं कि चूंकि हरि अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीव में स्थित हैं, अतः प्रत्येक जीव हरि है। ऐसे मूर्ख लोग प्रत्येक शरीर में स्थित आत्मा तथा परमात्मा में अंतर नहीं कर पाते। आत्मा तो जीव है और परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु जीव परमात्मा या परमेश्वर से भिन्न है। अतएव हरि सर्वेषु भूतेषु का अर्थ हुआ यह हुआ कि हरि परमात्मा के रूप में स्थित हैं, आत्मा के रूप में नहीं। यद्यपि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, प्रत्येक जीव को आदर देने का अर्थ प्रत्येक जीव में स्थित परमात्मा का आदर करना है। प्रत्येक जीव को परमात्मा नहीं मान लेना चाहिए। कभी कभी ढोंगी लोग जीव को दरिद्र नारायण स्वामी नारायण यह नारायण वह नारायण जैसे नाम प्रदान करते हैं। हमें यह स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि यद्यपि नारायण प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, किंतु जीव कभी नारायण नहीं बन सकता। हरे कृष्णा। तो आज का जो विषय है, हालांकि इस विषय पे बोलने के लिए मैं श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा कि आप आशीर्वाद दें कि मैं इस विषय पे कुछ बोल सकूँ। तो आज यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, यहाँ पर जैसे स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, या हम भी कभी स्कूल में गए थे, तो बच्चों को एक जब छोटे होते हैं बच्चे तो एक टॉपिक दिया जाता है माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखना। तो दरअसल ये जो टॉपिक है वो माय बेस्ट फ्रेंड का ही टॉपिक है, मेरा प्रिय मित्र। तो हालांकि इस भौतिक संसार में हमारे बहुत मित्र हैं, पर हमारे सबसे प्रिय मित्र कृष्ण जो परमात्मा रूप में सभी के हृदय में वास करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी से दोस्ती करना चाहता है तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज देखना चाहता है। कोई भी किसी का मित्र बनना चाहता है तो देखना चाहता है कि वो उसकी जरूरत में क्या काम आएगा, क्या उसकी मदद करता है, क्या उसका ध्यान रखता है, क्या हमेशा उसके साथ में रहता है, वे क्या उसकी गलतियों को माफ करता है, क्या जब अपने मित्र से डीलिंग करते वक्त क्या वो पेशेंट रहता है। तो इन चीजों का बेसिकली कोई भी व्यक्ति जब किसी से दोस्ती करना चाहता है तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखता है। हालांकि जैसे श्वेताक्षर उपनिषद में बताया गया है कि जो जीव और परमात्मा की स्थिति है उसी प्रकार से है जिस प्रकार एक ही टहनी पे दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी फलों का भोग कर रहा है और दूसरा पक्षी ऑब्जर्व कर रहा है, और जो दूसरा पक्षी ऑब्जर्व कर रहा है परमात्मा जो है वो बहुत पेशेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। हालांकि इस बात को जब और कोई व्यक्ति सुनता है तो वो इसे समझ नहीं पाता अपनी बुद्धि से कि किसी व्यक्ति में इतना धैर्य कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें भी कभी कभी मान लीजिए किसने कोई अपॉइंटमेंट दी, कोई मीटिंग का टाइम दिया, 2 बजे का टाइम दिया, 2:30 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, तो हमारा धैर्य टूट जाता है, छोड़ो मैं चलता हूँ, है ना। या फिर हम किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बहुत लंबे समय तक उस पर हम काम करते रहेंगे, हम देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम चाहते हैं कि उससे अपने संबंध को छोड़ दें। पर जो भगवान कृष्ण का जो धैर्य है वो हमारे भौतिक धैर्य की तरह नहीं है, क्योंकि इस भौतिक शरीर में रहने के बाद और भौतिक लोगों से डीलिंग करने के बाद, भौतिक संपर्क में रहने के बाद हमारी पूरी मेंटेलिटी भौतिक बन चुकी होती है। हम हर चीज को जज करते हैं, चेक करते हैं भौतिकता के आधार पर। हमें लगता है कि मुझ में धैर्य नहीं है तो भगवान में भी इतना धैर्य नहीं होगा। जब ये सोचते हैं कि भगवान कई है ना अनादि कालों से जो जीव है इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है और अनादि काल से भगवान ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये मेरी तरफ देखेगा, जब हम ये बात सुनते हैं तो समझ में नहीं आती कि किसी व्यक्ति में इतना धैर्य कैसे हो सकता है। तो दरअसल जो मेंटेलिटी हमारी अपनी है उसी मेंटेलिटी में हम सामने वाले व्यक्ति को देखने की और परखने की कोशिश करते हैं। हमें ये लगता है कि कृष्ण में भी धैर्य नहीं है, कृष्ण भी क्रोधित होते हैं, कृष्ण में भी कामुक वासनाएं हैं। तो इस मेंटेलिटी से हम भगवान को, परमात्मा को जज करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, पर जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हरि सर्वेषु भूतेषु, लोग इसका मतलब गलत निकाल लेते हैं। लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि हम ही परमात्मा हैं, हम ही भगवान हैं। ऐसे अभी एक व्यक्ति बता रहा था कि जो आजकल मेडिटेशंस होती हैं, कुछ सोसाइटीज जो मेडिटेशन में वर्क करती हैं वो उनको बिठा देते हैं या लेटा देते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि अब अपने शरीर पर ध्यान कीजिए, आत्मा पर ध्यान कीजिए, परमात्मा पर ध्यान कीजिए, ये ध्यान कीजिए कि आप वही परमात्मा हैं, आप भूल चुके हैं सब कुछ, पर निरंतर ध्यान करने से आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं कि गलत आइडेंटिफाई करने लगते हैं, अपने आप को परमात्मा ही समझने लगते हैं, भगवान ही समझने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद से एक बार श्रील प्रभुपाद के शिष्य पूछने आए, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद कुछ मायावादी ये तर्क करते हैं कि जैसे भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं ईश्वरा सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मैं सभी जीवों के हृदय में वास करता हूं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सभी के हृदय में वास करते हैं परमात्मा रूप में, इसका मतलब वो परमात्मा हुए। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार से मैं इस कमरे में हूं अभी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमरा हो गया, मैं इस कमरे में हूं पर मैं कमरा नहीं हूं, है ना। तो इसी प्रकार से क्योंकि जीव की कंडीशनिंग बहुत ज्यादा है और इसी कंडीशनिंग के फलस्वरूप वो अपने आप को भगवान मान बैठता है। हालांकि जो बद जीव की स्थिति यही है कि हमेशा माया में फंसा रहता है, और भगवान की स्थिति यही है कि वो माया के कंट्रोलर है, नियंता है, है ना। जीव है वो अपने आप को ही केवल जान पाता है। हालांकि अगर हम इसे भी सोचें, जैसे भगवत गीता में बताया गया जो जीव है, जो आत्मा है, वो नोअर ऑफ द अपने आप को जानने वाला है, पर अगर कोई व्यक्ति विचार करे तो क्या वो अपने आप को भी पूरा समझ पाता है, क्या वो अपने विचारों पे कंट्रोल कर पाता है? वो उस पे भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पर कृष्ण परमात्मा रूप में हर व्यक्ति की जीव में है और हर व्यक्ति को कंट्रोल कर पाते हैं। आप सोचिए, अभी हम अपने थॉट से जब फाइट करते हैं, हम इतना दुख, इतना स्ट्रगल उठाना पड़ता है। अगर हमें सभी के थॉट्स पता लग जाएं, है ना, अगर किसी पति को पता लग जाए कि उसकी पत्नी उससे ज्यादा सलमान खान को पसंद करती है, तो उसका क्या हालत होगी उसकी? वो खुशी से कभी जी नहीं पाएगा, है ना। अगर उसको ये पता लग जाए कि मेरे बच्चे मुझे पसंद नहीं करते और मेरी प्रॉपर्टी के पीछे लड़ रहे हैं, उसकी क्या कंडीशन होगी? उसको ये पता लग जाए कि जो मेरे मित्र हैं वो दरअसल मेरे मित्र नहीं है, वो ये साजिश बना रहे हैं कि मेरे को धोखा देने की, क्या स्थिति होगी उस व्यक्ति की? क्योंकि जो कंट्रोलर बनने की भावना है, अगर सामने वाले व्यक्ति के विचार उसे पता लग गए, तो उसकी कंट्रोलर बनने की भावना तो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी और वो बेचारा हमेशा पूरी तरीके से दुख में ही रहेगा। तो हर व्यक्ति की यही स्थिति है कि हर कोई परमात्मा बनना चाहता है, हालांकि अगर अपने अंदर वो विचार करे तो उसके अंदर अपना कोई धैर्य नहीं है, छोटी छोटी बातों से वो क्रोधित होता है। पर अगर जब गलत संपर्क में पड़ने के बाद, गलत संगति में आने के बाद, वो अपने आप को परमात्मा और भगवान समझ बैठता है, तो श्रीमद्भागवतम की तीसरे स्कंद में इसके लिए बहुत सुंदर बताया गया है कि क्या कारण है कि जीव अपने आप को, जीव परमात्मा को समझ नहीं पाता, इसका क्या कारण है। तो इसमें कुछ सीरीज ऑफ श्लोकास हैं और बहुत अच्छे श्लोक और बहुत अच्छे तात्पर्य इसमें बताए गए हैं, तो हम इसे कुछ इसमें से लेने का प्रयास करेंगे। तो ये तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 20वां श्लोक है। इसमें बता रहे हैं, एज द चैरियट ऑफ एयर कैरीज एन अरोमा फ्रॉम इट्स सोर्स एंड इमीडिएटली कैचेस द सेंसेस ऑफ स्मेल, सिमिलरली वन हु कॉन्स्टेंटली एंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन कैच द सुप्रीम सोल हु इज इक्वली प्रेजेंट एवरीवेयर। तो बता रहे हैं कौन व्यक्ति भगवान को, सुपर सोल को पकड़ पाता है। बता रहे वन हु कॉन्स्टेंटली एंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस, जो निरंतर रूप से प्रेममय सेवा में लगा रहता है, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित में, कैन कैच द सुप्रीम सोल, ऐसा व्यक्ति भगवान को पकड़ पाता है, समझ पाता है। जिस व्यक्ति में ये योग्यता नहीं है, क्योंकि वन हु कॉन्स्टेंटली एंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस का मतलब है हमेशा भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने वाला। जीव में अधिकांश इंजॉइंग मेंटेलिटी, है ना, खुद भोगने की जो वासना है ये हमेशा रहती है, और इस खुद भोगने की वासना के कारण जीव कभी भी सेवा नहीं कर पाता। भोगने के बारे में ज्यादा सोचता है, सेवा के बारे में कम सोचता है। तो इसी कारण से जीव कभी भी परमात्मा को समझ नहीं पाता, सुपर सोल को समझ नहीं पाता। और यही कारण है, इसी इंजॉइंग मेंटेलिटी के कारण जीव कभी भी किसी और लिविंग एंटिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, सम्मान नहीं दे पाता। जैसे इसी अनुवाद में जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनकी अंतर्यामी प्रतिनिधि स्वरूप परमात्मा का सदैव स्मरण करे, जो प्रतीक प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित हैं। इस प्रकार उससे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। तो जब तक वो व्यक्ति की सभी के अंदर परमात्मा को नहीं देख पाएगा, सुपर सोल को नहीं देख पाएगा, तब तक वो सभी का सम्मान नहीं कर पाएगा। इसके अगले श्लोक में बता रहे हैं, आई एम प्रेजेंट इन एवरी लिविंग एंटिटी एज द सुपर सोल, मैं हर जीव में परमात्मा रूप में वास करता हूं। इफ समवन निग्लेक्ट्स और डिसरिगार्ड्स दैट सुपर सोल एवरीवेयर एंड एंगेजेस हिमसेल्फ इन द वर्शिप ऑफ द डीटीज इन द टेंपल, दैट इज सिंपली इमिटेशन। और कोई भी व्यक्ति अगर उस सुपर सोल को निग्लेक्ट करता है, उसका सम्मान नहीं करता, डिसरिगार्ड करता है और हर जगह नहीं देखता उसे, और इसके साथ साथ वो अर्चक विग्रह की सेवा में लगता है मंदिर में, तो दैट इज सिंपली इमिटेशन, वो केवल एक दिखावा है। तो यहां पर तात्पर्य बता रहे हैं, वन हु वर्शिप द डीटी इन द टेंपल एंड डज नॉट शो रिस्पेक्ट टू अदर्स इज अ डिवोटी ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म इन द लोएस्ट स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो क्या बता रहे, वन हु वर्शिप द डीटी इन द टेंपल, जो अर्चक विग्रह की सेवा करता है मंदिर में और साथ साथ बाकी लोगों को सम्मान नहीं करता, बाकी जीवों का सम्मान नहीं करता, इज अ डिवोटी ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, वो ऐसा भक्त है जो भौतिक स्तर पर है, इन द लोअर स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस, और बहुत निम्न स्थिति पे है। आगे बता रहे हैं, वन हु वर्शिप्स द डीटी ऑफ गॉड हेड इन द टेम्पल बट डज नॉट नो दैट द सुप्रीम लॉर्ड एज परमात्मा इज सिचुएटेड इन एवरी लिविंग एंटिटीज हर्ट मस्ट बी इन इग्नोरेंस एंड इज कंपेयर टू वन हु ऑफर ऑब्लेशंस इनटू एशेस। तो बता रहे, जो भी व्यक्ति मंदिर में अर्चक विग्रह की सेवा करता है परंतु हर जीव में हर वस्तु में परमात्मा को नहीं देखता, भगवान को नहीं देखता, तो क्या है, मस्ट बी इन इग्नोरेंस, निश्चित रूप से वो अज्ञानता में है, एंड इज कंपेयर्ड, उसकी तुलना किससे की गई है, ऐसे व्यक्ति से जो यज्ञ तो कर रहा है, आहुति तो दे रहा है, पर वो आहुति अग्नि की जगह राख में डाल रहा है। तो इसी के परपट में बता रहे हैं, इफ विदाउट द प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ द लॉर्ड्स ओमनीप्रेजेंस वन सिंपली अटैच हिमसेल्फ टू द रिचुअल्स इन द टेंपल चर्च और मॉस्क, इट इज एज इफ ही वर ऑफरिंग बटर इनटू एशेस रेदर देन इनटू द फायर। तो तात्पर्य में भी यही बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति मंदिर में, किसी चर्च में, किसी मॉस्क में अगर भगवान की सेवा कर रहा है और अगर हर जीव में वो भगवान को नहीं देख पा रहा, तो निश्चित रूप से उसका यज्ञ उसी प्रकार से है जिस प्रकार वो राख में आहुति डाल रहा हो। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर बताई गई है, यहाँ बता रहे हैं, इन अदर वर्ड्स अ डिवोटी शुड नॉट इग्नोर एनी लिविंग एंटिटी, द डिवोटी मस्ट नो दैट इन एवरी लिविंग एंटिटी हाउएवर इनसिग्निफिकेंट ही मे बी इवन एन आंट गॉड इज प्रेजेंट। तो चाहे कोई जीव आत्मा कितनी भी इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, आंट चीटी अगर देखें हम लोग, तो चीटी बिल्कुल, जब व्यक्ति चलता है चीटियां मरती हैं, कोई भी व्यक्ति इस पे ध्यान नहीं देता कभी भी, पर अगर आप वैदिक शास्त्र देखेंगे और भक्तों के उदाहरण देखेंगे, तो जब कोई, जब वो चीटियों से भी डील, जैसे जड़ भरत की स्थिति में हम देखते हैं, जब उन्होंने महाराज रघुगण की पालकी उठाई हुई थी तो कुछ चीटियां चल के जा रही थी, तो इतने सतर्क थे वो चीटियों के पीछे कि वो घूम घूम कर चल रहे थे, है ना, हालांकि महाराज रघुगण को दिक्कत हो रही थी उससे, पर वो चीटियों को मार नहीं सकते थे। यही सेम चीज देखते हैं हम मृगारी की कथा में, है ना, मृगारी जो असुर था और जीवों की ऐसी स्थिति करता था कि उनको अधमरा छोड़ता था और उसमें आनंद लेता था, पर जब वो भक्त बन गया तो चींटियों को मारने से पहले चींटी उसके पैर के नीचे आ जाए, इससे उसको बहुत दुख लगता था। श्री प्रभुपाद के एक शिष्य भी थे, क्या नाम था उनका, बुल बिटर बुल बॉश, हाँ, तो वो भी जब टेनिस, जो टेनिस प्लेयर थे, तो उनका जो गेम हारने का कारण यही था कि जिस स्थान पर वो खड़े हो रहे थे उस स्थान पर चींटियां थी, हालांकि हर व्यक्ति को पता था कि जिस स्थान पर इस वक्त वो खड़े हैं वो निश्चित रूप से हारेंगे, परंतु उनको प्रभुपाद के वो आदेश याद थे, हालांकि प्रभुपाद से वो दीक्षित नहीं थे, पर प्रभुपाद के आदेशों को उन्होंने दिमाग में रखा था कि हर जीव में परमात्मा रूप है, हर जीव में आत्मा है। हमारे बहुत एक्सपीरियंस रहा है, सुनने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ जब मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, तो रेगुलर बेसिस पर जब भी महाराज के जाते थे, एक ना एक बार मॉर्निंग वॉक में महाराज जरूर बोलते थे कि ध्यान से चींटियां हैं, ध्यान से चींटियां हैं। तो ये जो भक्त का, ये भक्त का स्तर है भक्ति करने का, हालांकि अपनी निकृष्ट बुद्धि से मैं आज तक समझ नहीं पाया था कि महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरे को हमेशा ये लगता था कि महाराज सोचते कि जीवात्मा है, है ना, पर थोड़ा इस श्लोक पर प्रिपेयर करने में मेरे को समझ आया कि जो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो हर जीव में भगवान का देख पाते हैं, भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं और उसी के अनुसार उनका सम्मान कर पाते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि किस प्रकार से हर जगह जगह, हर कोने कोने में स्लॉटर हाउसेस खुल रहे हैं, ना? उसका कारण क्या है कि व्यक्ति इस नॉलेज से बहुत परे है कि हर जीव में परमात्मा है, और इस कारण से वो किसी जीव का सम्मान नहीं कर पाता, हर जीव को, हर वस्तु को वो भोगना चाहता है, और हालांकि भोगने के कारण वो कभी भी खुद खुश नहीं रह पाता, क्योंकि भोगना जीव की आदत नहीं है, जीव की आदत है सेवा करना। तो इसके आगे बता रहे हैं, वन हु ऑफर्स मी रिस्पेक्ट बट इज एनवियस ऑफ द बॉडीज ऑफ अदर्स एंड इज देयरफॉर अ सेपरेटिस्ट नेवर अटेन पीस ऑफ माइंड। ऐसा व्यक्ति जो मुझे सम्मान करता है पर बाकी जीवात्माओं से द्वेष करता है, सेपरेटिस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? अलगाववादी। सेपरेटिस्ट। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी नेवर अटेन पीस ऑफ माइंड, ऐसे व्यक्ति को कभी भी मन की शांति नहीं मिलती बिकॉज ऑफ हिज इनिमिकल बिहेवियर टुवर्ड्स अदर लिविंग एंटिटीज, क्योंकि उसका जो द्वेषी भाव है, जो अनफ्रेंड, जो विरोधी स्वभाव है उसका, इस कारण से उसे कभी भी मन की शांति नहीं मिल पाती। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं, शिवानंद सेन के पास भी एक पेट डॉग था और शिवानंद सेन उसको प्रसाद खिलाया करते थे। और यहाँ पर भी परपट में बताया गया, डिवोटिस विजन देयर फॉर मस्ट बी परफेक्ट, ही शुड इग्नोर बॉडली डिस्टिंक्शन एंड शुड सी ओनली द प्रेजेंस ऑफ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड द लॉर्ड हिमसेल्फ इन हिज प्लिनरी एक्सपेंशन ए सुपर सोल, दैट इज द विजन ऑफ अ प्योर डिवोटी। तो यही भक्तों का विजन यही रहता है कि वो हर जीव में परमात्मा को देख पाते हैं और उसी के अनुसार सबको सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर कपिल भगवान आगे कह रहे हैं, माई डियर मदर, इवन इफ ही वर्शिप विद प्रॉपर रिचुअल्स एंड पैराफर्नेलिया, अ पर्सन हु इज इग्नोरेंट ऑफ माई प्रेजेंस इन ऑल लिविंग एंटिटीज नेवर प्लीजेस मी बाय द वर्शिप ऑफ माई डीटीज इन द टेम्पल। तो ऐसा व्यक्ति जो चाहे प्रॉपर रिचुअल्स यूज कर रहा हो, पूरे नियमों के साथ भगवान की सेवा कर रहा हो और उसकी सामग्री बहुत अच्छी हो, पर जो हर जीव में मेरी प्रेजेंस को नहीं देख पाता, नेवर प्लीजेस मी, कभी मुझे खुश नहीं कर पाता बाय द वर्शिप ऑफ माई डीटीज इन द टेम्पल, अर्चय विग्रह में मेरी सेवा के द्वारा, जो हर जीव में मुझे नहीं देख पाता। तो ये लास्ट पर्पट में हम इसमें चर्चा करेंगे। यहां बता रहे हैं, दिस ग्रेटिट्यूड एंड लव ऑफ गॉड इज एग्जिबिटेड बाय अ प्योर डिवोटी, ऐसी कृतज्ञता और प्रेम केवल भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा ही दिखाई जा सकती है। हु नोज दैट द लॉर्ड लिव्स इन एवरी लिविंग एंटिटी, जो जानता है कि भगवान हर जीव में वास करते हैं। एज सच टेम्पल वर्शिप नेसेसरीली इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद, हालांकि जो टेम्पल वर्शिप है उसका एक पार्ट प्रसादम बांटना भी है। इट इज नॉट दैट वन शुड क्रिएट अ टेम्पल इन हिज प्राइवेट अपार्टमेंट और प्राइवेट रूम, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अपने प्राइवेट रूम में या प्राइवेट अपार्टमेंट में एक मंदिर बना ले, ऑफर समथिंग टू द लॉर्ड एंड देन ईट, भगवान को कुछ भोग लगाए और खा ले और सोचे कि यही सेवा है, ये सब कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स दैट इज बेटर देन सिंपली कुकिंग फूड स्टफ एंड ईटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग वन्स रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड, हालांकि आप बता रहे हैं कि उससे अच्छा है कि जो लोग खुद ही बनाते हैं और खुद ही खा लेते हैं, उससे बेटर है कि हम बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और खाएं। पर आगे क्या बता रहे हैं, पीपल हु एक्ट इन दिस मैनर, जो लोग एक कमरे में मंदिर बनाते हैं, खुद खाते, भगवान भोग लगाते हैं और खा लेते हैं, बता रहे हैं पीपल हु एक्ट इन दिस मैनर आर जस्ट लाइक एनिमल्स, वो केवल जानवरों की तरह है। बट द डिवोटी हु वॉन्ट्स टू एलिवेट हिमसेल्फ टू द हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पर जो भक्त अपने आप को ऊंची अनुभूति में, समझ में स्थित करना चाहता है, मस्ट नो दैट द लॉर्ड इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग एंटिटी, उसको ये जानना चाहिए कि भगवान हर जीव में वास करते हैं। एंड एज स्टेटेड इन द प्रीवियस वर्स, वन शुड बी कंपैशनेट टू अदर लिविंग एंटिटी, और जैसा पिछले श्लोक में बताया गया है, उसे हर जीव के प्रति कंपैशनेट, करुणा दिखानी चाहिए। Such a perfect devotee offer respects to every living entity because he is under the firm conviction that the supreme personality of Godhead has entered the body of every living entity as a super soul. तो ऐसा जीव व्यक्ति, ऐसा भक्त हर किसी का सम्मान इसलिए कर पाता है क्योंकि वो ये समझ पाता है कि भगवान परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय में वास करते हैं। तो आजकल अगर हम देखें बेसिक सिनेरियो, अगर हम बाहर का देखें, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, उसकी भोगने की टेंडेंसी, यूज करने की टेंडेंसी, मेंटालिटी हर चीज के प्रति है और हर व्यक्ति के प्रति है। और अगर हम अपनी फिलॉसफी को देखें, चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी को देखें, तो चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी इस मेटीरियल फिलॉसफी से, भोगने की फिलॉसफी से बिल्कुल विपरीत है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान दे। तो चार चीजें हैं, तृणादपि सुनिचेन, तृण से भी अधिक नीच मानकर, तरोरपि सहिष्णुना पेट से भी अधिक सहनशील बनकर, अमानी ना कोई मान की इच्छा न करकर, मान देन सबको मान देना। तो हालांकि अगर इन चारों में से हम देखें मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल कौन सा है, तो हमें समझ आएगा कि चारों में से सबसे मुश्किल है मान देन, है ना। कुछ लोगों से हम पूछते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम तो मान की इच्छा कभी नहीं करते, पर मान देते भी नहीं है, मान की इच्छा नहीं करते पर जब देने की बारी आती है तो हम किसी को मान देते भी नहीं है, रिस्पेक्ट देते भी नहीं है। तो ये मेंटालिटी हमारे भक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि यहां पर जैसे बताया जा रहा है इसी श्लोक में सातवें स्कंद में बताया गया है कि जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो बेसिकली हम उस व्यक्ति को सम्मान नहीं देते, हम सम्मान देते हैं उसके अंदर जो परमात्मा है उसको सम्मान देते हैं। तो अब एक बेसिक प्रश्न ये उठता है कि अधिकांश लोग जो सम्मान देते हैं तो सम्मान देने में उनका एक अपना लाइकिंग डिसलाइकिंग होता है, पर हमें जो जैसे इस तात्पर्य बताया गया कि पोजीशन के अनुसार, इंग्लिश में क्लियरली बताया गया है, इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर सम्मान करना चाहिए। तो कोई भी सम्मान किसी भी व्यक्ति को एक बराबर नहीं किया जा सकता, रिस्पेक्ट करने की कैटेगरीज है और चैतन्य शिक्षामृत में ये कैटेगरीज बताई गई हैं, 8 प्रकार की रिस्पेक्ट बताई गई हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लोगों को अलग अलग प्रकार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे जो पहले नंबर की रिस्पेक्ट है, नर मात्र मर्यादा, हर जीव को, कोई भी लिविंग एंटिटी, कोई भी जीव आत्मा, कोई भी मनुष्य है उसको रिस्पेक्ट करना, कोई भी मनुष्य मतलब कोई भी मनुष्य उसे सम्मान देना। इससे जो श्रेष्ठ आ जाता है वो है सभ्यतेर मर्यादा, सभ्यता जो कल्चर्ड है उससे ज्यादा रिस्पेक्ट उस व्यक्ति को करनी चाहिए। तीसरा है राज मर्यादा, कोई राजा है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चौथा है विद्या मर्यादा, हम रिस्पेक्ट करते हैं किसी को विद्या के बेसिस पे, उसकी नॉलेज के बेसिस पे, इसको कितना ज्ञान है। इससे श्रेष्ठ है सद्गुण मर्यादा, सामने वाले व्यक्ति में क्या क्वालिटीज हैं, क्या गुण हैं। इससे श्रेष्ठ है वर्ण मर्यादा, उससे श्रेष्ठ है सातवें नंबर पर आश्रम मर्यादा, और सबसे श्रेष्ठ है भक्ति मर्यादा। तो सबसे सबसे पहले बताया गया नर मात्र मर्यादा, जैसे श्री प्रभुपाद भी हमारी जो बेसिक फिलॉसफी है वो यही फिलॉसफी है कि हर जीव का सम्मान करना, है ना, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक का हर व्यक्ति का सम्मान करना, यही कल्चर, यही एटिकेट सभी को सिखाए जाते हैं। श्री प्रभुपाद भी एक बार ऐसे ही अपने शिष्यों के साथ नंदन कानन जू में थे और प्रभुपाद जी का एक शिष्य अपनी छड़ी से एक शेर को मारने लगे, तो जब शेर को मारने लगे तो प्रभुपाद जी ने रोका उसको। प्रभुपाद जी ने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सम्मान करना चाहिए इसका, ये शेर है, ये राजा है। तो अगर एक बेसिक लेवल पे देखें, जब एक जानवर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो उससे श्रेष्ठ है वो व्यक्ति जो मनुष्य जीवन में है, क्योंकि मनुष्य जीवन ह्यूमन बॉडी है ये बहुत रेयर है और बहुत रेयर लोगों को मिलती है ना। 84 लाख स्पीसीज में से सबसे कम स्पीसीज ह्यूमन स्पीसीज हैं, तो जिसको भी ह्यूमन स्पीसीज मिली है इसका मतलब उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी बेसिस के आधार पर हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और इससे ऊपर सभ्यतेर, है ना, कल्चर, जैसे अभी कल्चर का मतलब जो व्यक्ति गलत कार्य ना कर रहा हो, है ना, कल्चर्ड हो। अभी हम एक जगह गए थे ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां पर हालांकि उनकी फिलॉसफी और हमारी फिलॉसफी बिल्कुल विपरीत है, पर अगर कल्चर बेसिस पे देखें तो वहां पर रिस्पेक्ट करने के लिए बहुत कुछ था। वहां पर द वे लोगों से वो ट्रीट करते थे, हर किसी को सम्मान करते थे, आचार्य जी, स्वामी जी, है ना। तो हालांकि अगर भक्ति की दृष्टि से देखें तो उनकी फिलॉसफी और हमारी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है, और हमारी फिलॉसफी बहुत ही श्रेष्ठ है, पर अगर हम एक सभ्यता बेसिक कल्चर बेसिस पे देखें तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो काफी ऐसी चीजों पे कार्य कर रहे हैं जिस पे वर्क किया जाना चाहिए, जैसे काउ प्रोटेक्शन, गायों की रक्षा करना, तो बहुत ही तीव्रता से गायों की रक्षा कर रहे हैं, तो इस क्वालिटी के लिए, क्योंकि दे आर मोर कल्चर्ड, मोर जेंटलमैन, हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इससे श्रेष्ठ राज मर्यादा, है ना, कोई राजा हो, कोई लीडरशिप की पोजीशन पे हो कोई व्यक्ति, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में आता है कि चैतन्य जब सनातन गोस्वामी जब नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर काम करते थे और काम करते करते जब उन्होंने विचार किया कि अब उन्हें इस नौकरी को छोड़ देना चाहिए, तो वो अपने घर में बैठ गए और घर में बैठने के बाद कथा कर रहे थे। भक्त लोग घर में आते थे, ब्राह्मण घर में आते थे, नाम चलता था, कथा चलती थी। तो जब नवाब हुसैन शाह को पता लगा तो वहां पर पहुंचे, तो जब नवाब हुसैन शाह वहां पर पहुंचे तो सनातन गोस्वामी और जितने भी भक्त वहां पर थे वो खड़े हो गए। तो श्रील प्रभुपाद यहां पर लिखते हैं इस सम्मान का कारण क्या है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि दे सॉ कृष्णा इन हिम, उन सबने भगवान कृष्ण को देखा उस नवाब हुसैन शाह में। हालांकि अगर बाह्य दृष्टि से देखें तो नवाब हुसैन शाह में कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसके लिए उसको सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को मारता हो, गायों को मारता हो, मंदिर तोड़ता हो, उसके अंदर कोई भी ऐसी योग्यता नहीं है जिस कारण से उसे सम्मान करना चाहिए। पर क्योंकि वो एक पोजीशन पर है तो उस पोजीशन के कारण उसका सम्मान होना चाहिए। इससे श्रेष्ठ है विद्या मर्यादा। पोजीशन का तो सम्मान करना है पर विद्या का ज्यादा सम्मान होना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें भगवद गीता के 700 श्लोक याद होते हैं। एक बार मैं मायापुर में रुका हुआ होता और मेरे साथ वाले रूम में गदा भवन में एक व्यक्ति आके रुका, तो बहुत बड़ी दाढ़ी थी, तो कुछ दिनों तक तो मेरी उससे बात नहीं हुई। एक दिन उसने ही अप्रोच किया तो उसने पूछा आप गीता पढ़ते हैं, आप शास्त्र पढ़ते हैं? मैंने हाँ बताया, हाँ हम गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। तो उसने गीता सुनानी शुरू की, उसको गीता पहले श्लोक से 700 श्लोक तक पूरी याद थी और उसने बोला कि भागवतम के 18 अध्याय श्लोक में से कम 12,000 श्लोक उसको याद है। ऑलमोस्ट पूरी भागवतम अगर हम उसको बताएंगे कि लॉर्ड कपिला की जो टीचिंग आप उसको सुनाइए तो सारे श्लोक वो सुना रहा था लाइन वाइज। इतना ज्ञान, इतना नॉलेज, इतनी मेहनत उसने की थी। तो इस विद्या के लिए उसका सम्मान होना चाहिए। पर अगर भक्ति के बेसिस पे देखें तो वो भगवान के पवित्र नामों का जप नहीं करता था। अगर हम उसको बोलेंगे कि भगवान का जप करो या अगर हम उसकी कन्विक्शन को देखें कि उसको भगवान में कितना फेथ है, तो एक नया भक्त जो मंदिर में एक महीने पहले आया है उस व्यक्ति को ज्यादा विश्वास था उस व्यक्ति से। तो इससे अगला जो है सद्गुण मर्यादा, गुणों के आधार पर कि किस प्रकार से उसकी श्रद्धा के अनुसार पर। जैसे श्री प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया तो उसने प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखा श्लोक पढ़ते हुए, तो उसने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद देयर प्रोनंसिएशन इज नॉट परफेक्ट। प्रभुपाद ने कहा यस बट देयर अनंसिएशन इज परफेक्ट, है ना, उनका प्रोनंसिएशन है ये परफेक्ट नहीं है पर जो उनका वैराग्य है ये परफेक्ट है। तो उनके जो गुण है उस बेसिस पे हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इससे ऊपर वर्ण मर्यादा, वर्ण मर्यादा में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों में से सबसे अधिक सम्मान ब्राह्मण को मिलना चाहिए क्योंकि वह मुख है भगवान का, है ना। जैसे पुरुषोत्तम बताया जाता है ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहो राजन्यः कृतः उरु तद अस्य वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायता। जो भगवान के पैर हैं वो शूद्र हैं, जो भुजाएं हैं वो वैश्य हैं, वो क्षत्रिय हैं, और जो मुख है वो ब्राह्मण है। तो इस प्रकार से क्योंकि ये सब जितने भी वर्ण हैं ये भगवान की बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस बेसिस पर हमें उसका सम्मान करना चाहिए। पर इस वर्ण से जो ऊपर श्रेष्ठ सम्मान चले जाएगा वो है आश्रम बेसिस पे। आश्रम में भी स्पेसिफिकली जो सन्यास आश्रम में है, है ना। और इससे भी ऊपर अगर हम देखें तो भक्ति मर्यादा, भक्ति के बेसिस पे हमें किसी को सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर भक्ति बेसिस पे, जैसे एक बार एक बहुत बड़ी ऋषियों का समूह था और ऋषियों के समूह में उन्होंने चर्चा की कि किस ऋषि को सबसे बड़ी पोजीशन दी जाए। तो मार्कंडेय ऋषि को उन्होंने सबसे बड़ी पोजीशन दी क्योंकि वो 7 कल्प बूढ़े थे, 7 कल्पों से वो जी रहे थे। तो 7 कल्पों का मतलब बहुत ज्यादा आयु हो गई। तो जब ऐसी स्थिति थी तो जब वो सभा चल रही थी तो सभा के बीच में एक छोटा सा बच्चा आया पराशर। तो जब मार्कंडेय ऋषि ने पराशर को देखा तो वो अपनी गद्दी से उतरे और उन्होंने पराशर को प्रणाम किया। तो जब उन्होंने पराशर को प्रणाम किया तो कोई समझ नहीं पाया कि इतने बड़े जो 7 कल्प बूढ़ा व्यक्ति एक 7 साल के बच्चे को प्रणाम कर रहा है। पर जो मार्कंडेय ऋषि ने उसे प्रणाम किया वो प्रणाम उन्होंने उसकी आयु के बेसिस पे नहीं किया, उसकी भक्ति के बेसिस पे किया। क्योंकि वही पराशर भविष्य में आके पराशर मुनि बने। से एक मैं एक भक्त को बहुत पहले जानता था, वो 11 साल से कृष्ण भावना भावित में थे और हर साल एक माला बढ़ाते थे। 11 साल में हर न्यू ईयर पे वो जुड़े थे और हर न्यू ईयर पे एक माला शुरू करते थे, तो 11 साल में वो 11 माला पर पहुंचे थे। तो एक तो व्यक्ति ये हो गया, हालांकि अभी उन्होंने नियम शुरू नहीं किए थे कोई पालन करना, एक व्यक्ति ये हो गया। और दूसरा व्यक्ति जो नया नया मंदिर में आया और बहुत ही जल्दी उसको 16 माला पर आ गया, उसने हर प्रकार की भौतिक चीजों को, भौतिक आसक्तियों को त्यागा। तो अगर हम एक एक्सटर्नल रूप से देखें तो वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में बहुत पुराना जुड़ा हुआ है, पर एक व्यक्ति जो नया जुड़ा है भक्ति में, पर भक्ति के आधार पर वो बहुत श्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार से हो सकता है कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति भक्ति में इतना श्रेष्ठ ना हो पर कोई बच्चा बहुत श्रेष्ठ हो। जैसे मायापुर में हमारी यज्ञ क्लासेस होती थी, तो हमारे जो टीचर थे आनंद तीर्थ प्रभु, उनका एक छोटा बेटा था ब्रजविलास, वो 2.5 साल का है, इतना सा है, बिल्कुल छोटा सा, बड़ी मुश्किल से चलता है, पर उसको यज्ञ के सारे मंत्रास पता है, उसको यज्ञ का सारा पोजीशन पता है, कैसे अग्नि जलनी चाहिए, कौन कौन सी मुद्राएं करनी चाहिए। अगर आप उसका श्लोक पढ़ेंगे तो वो सारे श्लोक बोलेगा आपके साथ साथ, अगर आप श्लोक का मीनिंग बताएंगे तो सारे श्लोक का मीनिंग ही बोलेगा, पता होगा उसको। पर अगर आप उससे ABCD पूछेंगे तो उसको नहीं पता, क्योंकि अभी तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया। पर अगर भक्ति बेसिस पे देखें तो किसी बूढ़े व्यक्ति से वो 2.5 साल का बच्चा भक्ति में बहुत उन्नत है। इसी प्रकार से अगर हम अफ्रीका में देख चले जाएं तो अफ्रीका में काफी वृक्ष हमारे को मिलेंगे जो 2-2, 3-3, 4-4 हजार साल पुराने हैं। तो अगर इस बेसिस पे अगर हम किसी को जज करें कि उसकी आयु कितनी है, इस बेसिस पे अगर हम किसी का सम्मान करें तो ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते हैं, श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोली गई है। जब श्रीमद् भागवतम बोली गई थी तो सुखदेव गोस्वामी उस समय 16 वर्ष के थे, और जो सुनने वाले थे, श्रोता थे, वो श्रोता कौन कौन थे, उनके पिता व्यासदेव, उनके गुरु नारद मुनि, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऋषि मुनि, ये सब उस कथा में बैठे थे। तो अगर हम एक एक्सटर्नल रूप से देखें तो सुखदेव गोस्वामी भक्ति में आयु के मैटर से, भक्ति के मैटर से बहुत न्यू थे, पर किस आधार पर वो बोल रहे थे, भक्ति के आधार पर। तो ये जो रिस्पेक्ट है, सम्मान है, हालांकि हमें हर किसी का सम्मान करना है, पर हर किसी का एक जैसा सम्मान नहीं हो सकता। जैसे भगवत गीता में बताया गया है, पंडिता सम दर्शिना, हर किसी को एक ही दृष्टि से देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक भक्त को और एक कुत्ता खाने वाले को एक ही दृष्टि से देखता है। एक ही दृष्टि से देखने का मतलब क्या है कि सभी के अंदर वो परमात्मा की अनुभूति करता है जो पंडित है, और इस अनुभूति के बेसिस पे वो सभी का सम्मान करता है, सभी की इज्जत करता है वो। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक कुत्ते को और एक भक्त को वो एक ही जितना सम्मान देता है। सम्मान में वैरायटीज रहती, डिफरेंस रहता है उसकी पोजीशन के अनुसार। इसी प्रकार से मनुष्यों को भी जो सम्मान दिया जाता है उनकी पोजीशन के अनुसार उसमें डिफरेंस रहता है, पर सम्मान हर व्यक्ति को दिया जाता है। तो रिस्पेक्ट और सम्मान हमारी भक्ति का, हमारी संस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और चैतन्य महाप्रभु ने इस फिलॉसफी पे, अमानी न मान देने पे बहुत स्ट्रेस किया। अमानी बनना इतना कठिन नहीं है, पर मान देन, इसमें जो अहंकार टूटता है, ये सबसे कठिन कार्य है इन चारों चीजों में। कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल रूप से कुछ भी कर सकता है, पर आर्टिफिशियल रूप से मान नहीं दे सकता किसी को। मान देने के लिए उसे सच में विनम्र बनना पड़ेगा, सच में सहनशील बनना पड़ेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। और किसी भी रिलेशन का अगर हम बेसिस देख लें, एक पति पत्नी के बीच में रिलेशन हो, एक माता पिता बच्चे के रिलेशन में बीच में अगर रिलेशन हो, या अगर एक सुपीरियर और जूनियर के बीच में रिलेशन हो, तो हर रिलेशन का जो बेसिक फाउंडेशन है वो है रिस्पेक्ट। और इस रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर ये रिस्पेक्ट नहीं है, इसका कारण ये है कि हर जीव दूसरे जीव को भोगने का केंद्र समझ रहा है। वो क्या सोच रहा है कि किसी ना किसी तरीके से सामने वाले व्यक्ति से कुछ एक्सट्रैक्ट कर लूं, कुछ निचोड़ लूं, मैं कुछ निकाल लूं सामने वाले से, है ना। कुछ लोग सामने वाले व्यक्ति को पैसे देने की मशीन समझते हैं, कुछ लोग सामने वाले व्यक्ति को अपने अनफुलफिल्ड डिजायर्स को फुलफिल करने का एक इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। पर दरअसल ये जब बाधाएं आ जाती हैं रिलेशंस के बीच में, तो जो सम्मान का ब्रेकडाउन हो जाता है, जो रिस्पेक्ट का जो रिलेशन वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल रूप से देखें तो किसी को भी हम जज नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, अगर हम थोड़ा पास्ट में चले जाएं, श्रील प्रभुपाद जब गृहस्थ आश्रम में थे, आप सोचिए जब श्रील प्रभुपाद एक मठ में जाया करते हो, अपने किसी भी गौड़े मठ में रहते होते या दर्शन के लिए जाते हो या फिर कथा सुनते हो, तो कैसे लगते होते प्रभुपाद? बिल्कुल सिंपल। जैसे अभी हम देखते हैं कितने बाहर से लोग आते हैं, धोती कुर्ता पहना होता है, धोती पहनी होती है, ऊपर टी शर्ट पहनी होती है, शर्ट पहनी होती है, कितने ऑर्डिनरी से लगते हैं लोग। अगर एक्सटर्नल रूप से चेक किया जाए या एक्सटर्नल रूप से उस समय किसने प्रभुपाद को अगर चेक किया होता तो कितने ऑर्डिनरी लगता है व्यक्ति। एक मंदिर ऐसे बाहर से व्यक्ति आ रहा है तो धोती कुर्ता पहनता है, पर किसने एज्यूम भी नहीं किया था कि ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। तो अगर हम एक्सटर्नल रूप से किसी व्यक्ति को देखें तो हम कभी भी जज नहीं कर पाएंगे। एक बार एक भक्त से हम सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि अगर हमें ये पता लग जाए कि जो हमारे सामने भक्त है उसकी क्या पोजीशन है भगवान के धाम में, तो हम बेहोश हो जाएंगे। अगर हमें ये पता लग जाए कि वो भगवान, आप सोचिए हम किसी का सम्मान नहीं कर रहे, या अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, अगर हम पता लग जाए हमें कि वो भगवान के धाम में भगवान का ग्वाल बाल है और भगवान को बहुत प्रिय है ना, या फिर वही व्यक्ति भगवान के धाम में भगवान की कोई सखी है या भगवान का कोई सेवक है, तो आप सोचिए उस व्यक्ति की क्या स्थिति रह जाएगी। तो ये जो ऑर्डिनरी ट्रीट करना या किसी व्यक्ति को ऑर्डिनरी सेंस में देखना हमारी भक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक, बहुत ही नुकसानदायक है। तो भक्ति का जो मूल अंग है वो है रिस्पेक्ट, सम्मान। और ये रिस्पेक्ट सम्मान तब तक कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, हर चीज की, हर वस्तु की और हर व्यक्ति के सम्मान तब तक नहीं कर पाएगा जब तक हर किसी के अंदर वो परमात्मा रूप, परमात्मा को नहीं देख पाएगा, सुपर सोल को नहीं देख पाएगा। क्योंकि जब तक कि हर व्यक्ति में सुपर सोल को देखने की टेंडेंसी नहीं बनेगी, तब तक हर चीज के प्रति भोगने की मेंटालिटी बनी रहेगी। हर चीज से हम लोग यही सोचेंगे कि मैं किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ निकाल लूं। तो अगर हम इस मेंटालिटी से बचना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम हर चीज का, हर व्यक्ति का पूरा सम्मान कर सके, अगर हम ये चाहते हैं कि हम पूरी रूप से खुश रह सके, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा माइंड पीसफुल रह सके, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम हैबिट बनाएं हर लिविंग एंटिटी में परमात्मा को देखने की, हर अरेंजमेंट्स में परमात्मा के अरेंजमेंट्स को देखने की। जब हम ये कार्य करने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि हमारा माइंड पीसफुल हो गया है, हम हर व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग खुश रह पाएंगे। हमारे खुश ना रहने का इस वक्त ये कारण है कि हम किसी में भी भगवान की अनुभूति नहीं कर पा रहे, और भगवान की अनुभूति ना करने के कारण वो भोगने की टेंडेंसी है। तो जब भी ये भोगने की टेंडेंसी आए तो हमें याद करना चाहिए मृगारे के एग्जाम्पल को, कि किस प्रकार से वो चींटियों का सम्मान करता था, जड़ भरत के उदाहरण को, किस प्रकार से जो हमारे आचार्य हैं, प्रेजेंट आचार्य हैं, वो किस प्रकार सम्मान करते हैं। तो ये लास्ट चीज पढ़ के मैं क्लास को विराम दूंगा। इसमें ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है, नेवरदलेस द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एज डिस्क्राइब्ड इन दिस वर्ड्स। इस श्लोक में परमात्मा की चर्चा हुई थी, तो बता रहे हैं जो चर्चा हुई है यहां पर भगवान की, वेट्स पेशेंटली विद इन द हार्ट ऑफ द कंडीशन सोल, बहुत ही धैर्य से हर जीव के हृदय में पेशेंटली, बहुत धैर्य से भगवान प्रतीक्षा करते हैं, एंकरेजिंग हिम टू रिकॉग्नाइज द लॉर्ड। उसको एंकरेज करते हैं भगवान बार बार, रिकॉग्नाइज द लॉर्ड, किस ना किसी प्रकार से भगवान उसको एंकरेज करते हैं मुझे जाने, कभी दुख देकर कभी सुख देकर, कभी दुख देकर कभी सुख देकर, सम हाउ और अदर मुझे रिकॉग्नाइज कर पाए कि मैं हूं अल्टीमेट कॉज, हु इज सिटिंग बिसाइड हिम, जो उनके बिल्कुल पास में ही बैठे हैं। सच रिकॉग्निशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बता रहे हैं ऐसा रिकॉग्निशन अगर हम जान जाए परमात्मा को जो हमारे साथ में बैठे हैं, इज द बिगिनिंग, ये शुरुआत है ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस, हर प्रकार की शुभ चीजों की, एंड हैप्पीनेस फॉर द कंडीशन सोल, और वह जीव के जीवन में सुख की ये शुरुआत है। तो अगर हम ये जान जाएंगे कि भगवान किस प्रकार से हमारी हर स्थिति, हर पोजीशन पर हमारी मदद कर रहे हैं, और हर जीव के अंदर भगवान की अनुभूति हम कर पाएंगे, तो हमारी लाइफ की ऑस्पिशियसनेस, हमारी लाइफ में शुभ होना और हमारे जीवन में आनंद, खुशी होने की ये प्रारंभ, बिगनिंग बताई गई है। तो जैसा इस श्लोक में बताया गया है कि हमें ये चाहिए कि हर जीवात्मा में हम परमात्मा की अनुभूति करें, और इसी बेसिस पे हर व्यक्ति के पोजीशन के अनुसार हम हर व्यक्ति को, हर जीव को सम्मान दें, रिस्पेक्ट करें। तो समय हो गया है, मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पर्सनल रूप से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।